शुरू करते हैं सूरत नमल। नमल च्युंटी को कहते हैं, आपने कभी इसको अहमियत दी? च्युंटी, एंट, छोटी सी च्युंटी, अल्लाह की इतनी प्यारी मखलूक कि अल्लाह को उस पे भी इतना प्यार आता है कि उसके नाम पे अल्लाह ताला ने बाकायदा एक सूरत रख दी। देखेंगे क्यों है, इंशाल्लाह इसी के बीच में ये चीज आपके सामने आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक च्युंटी भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक नमूना होती है और इसके साथ भी अल्लाह ताला इंसानों को कितना कुछ सिखाते हैं। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन, तिल्का आयातुल कुरआनी व किताबे मुबीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तौसीन, ये आयतें हैं कुरान की यानी वाजे और रोशन किताब की। हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए है जो नमाज कायम करते हैं और जकात अदा करते हैं और आखरत पर यकीन रखते हैं। जो लोग क्यामत पर ईमान नहीं लाते, हमने इन्हें इनके करतूत जीनत दार करके दिखा दिए, बस वो भटकते फिरते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और आखरत में भी वो सख्त नुकसान याफ्ता है। बेशक आपको अल्लाह हकीम व अलीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। ये थी आयत नंबर 1 से 6, 1-6। इन आयत का टॉपिक है हिदायत और खुशखबरी, तो ईमान वालों के लिए है। कितनी प्यारी आयत है ना, आयत नंबर 2, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ऐसे लगता है कि हिदायत गाइडेंस भी उन्हीं को मिलती है जो ईमान लाते हैं, और जो ईमान लाने के बाद अमल करेंगे उनको खुशखबरियां मिलने लगती हैं। फिर इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ बातें बता दी कि ये होते हैं मोमिन, नमाजें कायम करने वाले, ज़कात देने वाले और आखरत का यकीन रखने वाले। ये तीन काम कर लेना तो यकीन करें पूरी शरीयत पे अमल हो जाएगा। आखरत में पकड़े जाने का डर जो है इंसान को बहुत सारी बुराइयों से रोकता है। कल जन्नतियों को जब उनके नामे अमाल दाएं हाथ में मिलेंगे तो वो लोगों को खुशी खुशी दिखाएंगे। सूरह अल-हाक़ा में आता है, कहेंगे हाउ मुकरो किताबिया, देखो मेरा नामे माल मुझे कितना प्यारा मिला। लोग उससे पूछेंगे तुम क्या करते थे, तो एक ही जुमला बोलेंगे, इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैं जो ये गुमान था कि मैं अपने हिसाब से मुलाकात करूंगा। इस एहसास को बेदार करने की जरूरत है। हर दिन हर रात सोने से पहले एक दफा ये जरूर सोचिए कि जो काम आज मैंने किए इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है, अल्लाह ताला मुझे इसके बदले में क्या देगा, और जो गलत काम किए क्या मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। दूसरी चीज इस आयत के अंदर हाईलाइट कर लीजिए, आयत नंबर 4 में, ज़य्यन लहुम आमालुहुम फहुम यामहून, के शैतान ने या उनके आमाल जो है वो खूबसूरत करके दिखा दिए गए। ये क्या चीज है, आप देखिए कि अपने आप को हक बात के मुताबिक ढालने के लिए तैयार ना होना, ये इस साइकोलॉजिकल कंडीशन का नाम है जिसको यहाँ आमाल की खूबसूरती से साबित किया गया। जो बंदा किसी बात को मानने के लिए संजीदा नहीं होता ना, तो वो हमेशा अपने गलत कामों को खूबसूरत नाम देके करता है। नतीजा क्या होता है कि वो अपनी इसलाह से बिल्कुल गाफिल हो जाता है। फिर ऐसे शख्स को अपने इस गलत रवैये की एक ही सजा भुगतनी पड़ती है, एक बहुत भारी कीमत उनको देनी पड़ती है, और वो क्या कि इनकी आखिरी मंजिल जहन्नुम के सिवा और कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपने गलत कामों को गलत समझें और फिर उनको बदलने की नियत और दुआ करें। इस काल मूसा लि अहलिही इन्नी आनस्तु नारा, याद होगा जबकि मूसा ने अपने घर वालों से कहा मैंने आग देखी है, मैं वहां से या तो कोई खबर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा ताकि तुम आग सेक सको। जब वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि बाबरकत है वो जो इस आग में है, और बरकत दिया गया जो वो इसके आसपास है, पाक है जो अल्लाह तमाम जहानों का पालने वाला है। मूसा सुन, बात ये है कि मैं ही अल्लाह हूँ गालिब बाहिकमत। इस आयत को हाईलाइट कर ले, या मूसा इन्नहु अनल्लाह। क्या दिल पे बीती होगी मूसा के जब अल्लाह ने ये कहा होगा मैं अल्लाह। पूरे कुरान में जहां भी बात होती है अन्नहु गायब के सीगों में, और यहाँ हाजिर के मुतकल्लिम के सीगे में, कि मैं हूँ अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ गालिब बाहिकमत। तू अपनी लाठी डाल दे। मूसा ने जब इसे हिलता जुलता देखा इस तरह गोया कि वो एक सांप है, तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी ना देखा। ए मूसा खौफ न खा, मेरे हजूर में पैगंबर डरा नहीं करते, लेकिन जो लोग जुल्म करें फिर इसके इवज नेकी करें, इस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। और अपना हाथ गिरेबान में डाल, वो सफेद चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। तो नौ निशानियां लेकर फिरौन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का गिरोह है। बस जब इनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मौजदे पहुंचे तो वो कहने लगे ये तो सरीख जादू है। उन्होंने इनकार कर दिया हालांकि इनके दिल यकीन कर चुके थे सिर्फ जुल्म और तकबर की बिना पर। बस देख लीजिए कि इन फितना परदास लोगों का अंजाम कैसा हुआ। ये थी आयत नंबर 7 से 14, 7-14। इसका उन्वान है दिल मान चुके थे, زبانوں نے انکار کیا، کیوں؟ تکبر اور بڑائی کا احساس، بہت سارے لوگوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، حق مان جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن ماننا کیوں نہیں، عمل بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا تذکرہ کیا جو مدین سے مصر آتے ہوئے تھا، اور یہ ایک درخت تھا جہاں پہلی دفعہ موسیٰ کو کلیم اللہ بننے کا شرف حاصل ہوا. آج بھی وہاں پہ عیسائیوں نے ایک گرجا اور خانقاہ تعمیر کی ہوئی ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں. وہ جگہ تھی، وہ درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق پیدا کر رہے تھے جو ہم سب کو بھی پیدا کرنا ہے اپنی تنہائیوں میں، اپنے مفرصت کے اوقات میں. پھر ایک اور چیز اس حصے سے بڑی خوبصورت پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ موسیٰ آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری لے کر آئے. ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں نا، آگ لینے گئے پیغمبری لے کے آئے. اچانک، بالکل پہلے سے پلانڈ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی بڑا خوبصورت تحفہ دینا چاہتے ہیں نا، تو اچانک اور غیر متوقع دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو براہ راست اللہ کی طرف سے سمجھے، اور اس سے اس کے اندر اور زیادہ شکر گزاری کے جذبے پیدا ہوں. ہدایت بھی ایک تحفہ ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی اور میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا ہدایت کی طرف آنے کا، اللہ ہمیں اس کتاب کی طرف لے آیا. جب اللہ کی کتاب کو پانے کے بعد دل میں ہدایت کے جذبات ابھرے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ ہدایت کا تحفہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اور بعض لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، شروع سے کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں ہمیں خواب آ رہے ہیں، بعض کو ڈر لگتا ہے، بعض کی زندگی میں کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک دم زندگی میں کسی سانحے سے دوچار کر دیتے ہیں. اچانک کسی کی موت ہو گئی، جوان بچہ دنیا سے چلا گیا، طلاق ہو گئی، بیوگی ہو گئی، یہ لمحے جو ہوتے ہیں نا یہ انسان کو توڑ دیتے ہیں. ان اچانک مرحلوں کے پیچھے اللہ کا کوئی بہت بڑا تحفہ چھپا ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور عموماً وہ ہدایت کا تحفہ ہوتا ہے. اس طرح بھی شر سے اللہ تعالیٰ خیر کو نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تحفوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے. سلیمان کے سامنے جب ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندے جمع کیے گئے، ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے. اس کی بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے اور ہنس دیے اور دعا کرنے لگے اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کرے. بڑی پیاری دعا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اس دعا کو پڑھنا چاہیے. تو یہاں ٹاپک لکھ لیتے ہیں، یہ تھی آیت نمبر 15 سے 19، 15 to 19. ان آیات کا ٹاپک ہے نعمت ملی تو شکر اللہ کا کیا. یہاں سے حضرت داؤد اور سلیمان کا اب قصہ شروع ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بلیس تھے اس معاملے میں کہ ان کو جانوروں کی بولی بھی سمجھ آتی تھی. ایسا ہی ایک موقع تھا کہ جب آپ کسی جگہ قافلہ لے کے نکلے تو راستے میں کیا ہوا کہ جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ زمین میں جو مٹی ہے یا کوئی پودے ہیں یا چھوٹے چھوٹے یعنی کیڑے مکوڑے پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی بے خبری میں واقعی ان پہ پاؤں آ سکتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام جب گھر سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے اور وہ دوسری چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ جلدی سے ادھر ادھر چھپ جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں بے خبری میں پکڑ نہ لیں. یہ لفظ اتنا پیارا مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو پتہ نہ ہو، چیونٹی بھی رعایت کر رہی، یعنی کہتی یہ بڑے ظالم ہیں، یہ ہمیں مارتے ہیں، اس کو پتہ ہے یہ بے خبری میں کرتے ہیں. اللہ کرے ہمیں بھی یہ توفیق ہو کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کے کہیں کہ یہ بے خبری میں کر رہے ہیں، یہ نہیں کرتے یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ بڑے ہدایت سے دور ہیں. تو بہرحال اس نے پھر اس بات کو پیش کیا، سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے، فتبسم داہقم. اب آپ کو کسی بول چونٹی کی آواز سمجھ آ جائے تو آپ نہیں ہنسیں گے، لوگ تو کارٹونز میں چونٹیوں کی باتیں سن سن کے ہنستے پھرتے ہیں، تو اصل چونٹی کی آواز سمجھ آ جائے تو یہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو فوراً اللہ کے آگے چھپ گئے، تکبر نہیں کا دیکھا، ہا 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 دیکھو میں ہوں نا، شوئیں مارتے اپنی فوج اور لشکر کے آگے بڑے بنتے، کچھ نہیں بڑے بنے، بلکہ کہا اللہ یہ تیری نعمت ہے کہ تو نے مجھے یہ بات सुनने की तौफीक दी, यही रवैया मतलूब है। बड़ी से बड़ी नेमत आए ना, और कुरान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपको अल्लाह का कलाम जितना सुनना मिले, जितना समझ आए, जितने आपके दिल पे इसका असर आए, तो क्या करे के रब्बी औज़ेनी अनशकुर नेमत कल्लती अनमत अलैया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये नेमत दी कि अब मुझे वो कुरान की आयतें समझ आती हैं जो नहीं आती थी। पहले मेरी तरावियां इतनी बोर होती थी कि मैं एक टांग पे पाँव रखता, कभी दूसरे पे रखती, कब खत्म होगा, अब मुझे उसमें कुछ समझ आने लगा। उतना अल्लाह का शुक्र करें आप, देखे जो शुक्र करेगा अल्लाह उसकी नेमत को बढ़ाएगा। चंद बातें चींटियों के बारे में, तो चींटी के बारे में भी बहुत सारे यकीन करें हकायक है, थोड़े से उसमें से आपके सामने रखूंगी। पहली बात है कि अकेली चींटी जिंदा नहीं रह सकती। जिस तरह हमने शहद की मक्खी में इज्तमाइयत पढ़ी थी ना, यूनिवर्सैलिटी, और आप देखिए कि मैं तो जितना कुरान पढ़ती जा रही हूँ अल्लाह की साइंस की रोशनी में, एक लफ्ज मेरे दिल में जमता जा रहा है, इज्तमाइयत, तौहीद, एक को मानो, रब को मानो। ये पूरी कायनात हमें इज्तमाइयत सिखाती है, किस अकीदे पे, कि ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां तो सूरत मायदा में हम पढ़ चुके ना कि तालो इला कलिमतन सवाम बैनना व बैनकुम, वो तो हमने दुनिया वालों में कहा था ना कि तुम सब हम एक कलमे पे जमा हो जाएं कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत ना करें। यकीन करें कि इस कायनात को जुबान मिल जाए ना, पहाड़ों को, सूरज को, चांद को, चींटियों को, और हम सुने, सब ऊंची आवाज से यही कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यूनिटी। तो पहली बात है कि ये अकेली नहीं रहती, टीम वर्क इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। कहीं खाने का कोई जर्रा देखती हैं तो अकेली नहीं खाती, बल्कि फौरन भाग के जाती हैं और अपनी दूसरी चींटियों को बुलाती हैं। आप कभी देखे कहीं एक चीनी का थोड़ा सा जर्रा छोड़ दे, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वहां चींटियों की लाइन लगी हुई है। कभी आपने सोचा ये चींटियों की लाइन कहाँ से लगी? हम होते ना कहते पहले खुद खा लो, पेट भर लो, फिर सर पे बिठा लो, फिर पाँव पे बिठा लो, अब इसको फ्रीज कर लो, थोड़े को ड्राई कर दूं, थोड़े का शरबत बना के रख लूं। नहीं, अकेली नहीं खाती, फौरन जाती है, जल्दी जल्दी चलो, और जाती कैसी है, अपने परों को बजाती है। पर बजाती है ना ये मासूम से, इसके पर जो बजते हैं तो दूसरे लोग जो है इसकी बातें जानने लगते हैं, और 3 से 4 जुबानें जानती है चींटी। आपको कितनी आती है? मेरा ख्याल है एक भी ठीक नहीं आती। उर्दू बोलते हैं तो इंग्लिश के लफ्ज, इंग्लिश बोलते हैं तो पंजाबी के लफ्ज, और अल्लाह ही जाने हम और कुछ क्या करते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि जंगजू होती है, हमला करती है, बकायदा जंग करती है, दुश्मन के ऊपर एसिड फेंकती है अपने मुंह से निकाल के, और कुछ ऐसी चीजें इनकी आवाज की होती हैं कि जिससे फौरन दूसरी चींटियां भी ये समझ जाती हैं। बस चींटियां गुलाम होती हैं, यानी कुछ स्लेव चींटियां होती हैं और कुछ मालिक, वही इंतजाम तंजीम है कि एक कोई इनकी लीडर होती है और बाकी जो हैं वो उसके साथ चल के काम करती हैं, और मेल बेचारे वही करते हैं जो पीछे हमने मक्खियों में भी पढ़ा था कि सारा काम फीमेल्स करती हैं, और आप भी कहेंगे कि हम भी सारा ही करते हैं, लेकिन मेल का बस एक ही काम होता है कि वो मेटिंग करने के बाद मर जाते हैं, यानी उसके बाद वो काम नहीं रहते, और बाकी सारे काम जो होते हैं रिप्रोडक्शन के और सब कुछ वो फीमेल्स करती हैं। ये बात हमें क्या सिखाती है कि फिर हम भी काम करें? अगर हमें औरतों को ज्यादा काम करने पड़ते हैं तो शुक्र करें मर्द अगर आपके साथ चल रहे हैं तो यही बहुत है। देखिए मर्द की एक ही नेकी बहुत है कि वो आपके साथ गुजारा कर रहा है, बाकी अगर आप सारे काम कर लेंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला वो, और मैंने आपको क्यों कहा, मैंने खुद को क्यों नहीं कहा, वो मर्द कहते ना कि अब हमें जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी क्योंकि हमने शादी जो कर ली, तो फिर सबर भी जन्नत मिल जाएगी और कुछ ना करे। तो बहरहाल इंशाल्लाह कभी डिटेल से इसको पढ़ेंगे और आपको कोई प्रेजेंटेशन दिखा सके तो फिर इस पे आपको बहुत सारी और चीजें भी पता चलेंगी। इस दुआ को याद जरूर कीजिए, आगे फिर आएगी ये दुआ थोड़े से अल्फाज के फर्क के साथ। चलिए आगे देखते हैं I-20 से। आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? यकीनन मैं इसे सख्त सजा दूंगा, इसे जिबा कर डालूंगा, या मेरे सामने कोई सरीख दलील बयान कर दे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि आकर इसने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे उसकी खबर नहीं, मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। मैंने देखा इनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और इसका तख्त भी बड़ी अजमत वाला है। मैंने इसे और इसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने इनके काम इनको खूबसूरत करके दिखला कर सही राह से रोक दिया, बस वो हिदायत पर नहीं आते कि इसी अल्लाह के लिए सजदा करे जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो सब कुछ जानता है। इसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, वही अजमत वाले अर्श का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर इन्हें दे दे, फिर इनके पास से हट जा, देख के वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगी, है सरदारो, मेरी तरफ तो एक बाबुकत खत डाला गया जो सुलेमान की तरफ से है, जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह की तरफ से शुरू है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरे सरदारो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा मशवरा दो। मैं समर का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय में ना हो नहीं किया करती। इन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। इसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो इसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। बस जब कासिद हजरत सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो इसने तुम्हें दे दिया है, बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो, यानी मुझे नहीं चाहिए। जा इनकी तरफ वापस लौट जा, हम इनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की इनमें ताकत नहीं, और हम इन्हें जलील ओपस करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। आपने फरमाया, है सरदारो, तुम में से कोई है जो इनके मुसलमान होकर पहुँचने से पहले ही इसका तख्त मुझे ला दे। एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठे इससे पहले मैं इसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और अमानतदार भी हूँ। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, क्या पलक छपकाए, इससे पहले मैं इसे आपके पास पहुंचा सकता हूँ। जब आपने इसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आसमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या ना शुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफे के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो ना शुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और बुजुर्ग गनी और करीम है। हुक्म दिया, इसके तख्त में कुछ फेर बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि वो राह पा लेती है या इनमें से हो जाती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई, इससे पूछा गया कि क्या ऐसा ही तेरा भी तख्त है? इसने जवाब दिया, ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। इसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। इससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे समझ करके ये हौस है। इसने अपनी पिंडलियां खोल दी, फरमाया, ये तो शीशे से मढ़ी हुई इमारत है। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बनती हूँ। ये थी आयत नंबर 20 से 44, 20-44। इसका उनवान लिखेंगे, हक की जीत बातिल की शिकस्त। दूसरा इसका टॉपिक लिखेंगे, असूलों पर सौदेबाजी नहीं। आपने सुनी, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी थी। वाकयात के अंदर से वाकई सबक लेने की बहुत सारी हमारे पास दलीलें होती हैं। कुछ अमल की बातें नोट करेंगे कि जो हमने इस कहानी से सुनी। पहली बात है कि परिंदों की बोलियों में खुद-खुद को भी जानते थे। खुद-खुद के बारे में कुछ बात इंशाल्लाह हम कल करेंगे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत को देखिए कि इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी उनका रोब था, लेकिन उसको क्या कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों नहीं। आप इस आयत को हाईलाइट कीजिएगा, आयत नंबर 20 और 21 को, यहाँ आखिरी हिस्सा, अम कान मिनल गाइबीन लाउअज़्ज़िबहु अज़ाबन शदीदन। हुदहुद उनके पास मौजूद नहीं था उस महफिल में जहाँ दूसरे मौजूद थे, तो कहने लगे, अपने ना आने की कोई वजह बताए या फिर मैं इसको सजा दूंगा। इससे क्या पता चलता है कि उस्ताद तालिब इल्म को छुट्टी करने की वजह से सजा दे सकता है। किस तरह? कि वो अपनी कोई एप्लीकेशन ना दे। ये सुल्तान मुबीन क्या है? ये एप्लीकेशन है, ठीक है, डर क्यों गए? दूसरी बात है कि जानवरों के अंदर भी तौहीद और शिर्क का फ़र्क होता है। फिर अगली बात जो पता चली कि जानवरों से भी अल्लाह ताला तबलीग का काम करवा लेता है। आगे आप पढ़ेंगे और रिवायत में आता है कि क़यामत के करीब जब लोगों को बुराइयों पर टोकना छोड़ देंगे तो ज़मीन से एक जानवर निकलेगा जिसको दाबतुल अर्ज़ कहेंगे, और वो जाके लोगों को फिर स्टेम करेगा। आगे आने वाली है वो आयत, आप खुद भी उसमें देख लेंगे। तो अगर आज किसी को अल्लाह के काम करने की तौफीक मिल रही है तो शुक्र अदा करे, लेकिन ये मत सोचे कि वो अल्लाह की मजबूरी है। जब इंसान ये काम नहीं करते तो अल्लाह ताला जानवरों से काम करवा लेता है। फिर अगली बात इसमें हमें पता चली कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबिया में से थे कि जिन्होंने अल्लाह के नबी से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के लफ्ज को इस्तेमाल किया। और आपकी एक रिवायत में भी मिलता है कि मुझसे पहले सुलेमान के अलावा किसी और पैगम्बर को ये खूबसूरत आयत नहीं दी गई। और रिवायत में आता है कि एक मौके पे मक्का वाले जो बहुत ही जिच हो रहे थे कि ये हर दिन सूरतें आ रही हैं कुरान के तौर पे, तो इन्होंने कहा कि हम भी जरा एक ऐसा कुरान बना के दिखाते हैं। तो एक शख्स था इब्ने मुकफ्फा, इन्होंने उसको कहा, अदीब था और उसको अरबी जुबान पे बहुत ज्यादा अबूर हासिल था, उसको कहा कि देखो हम तुम्हारी सारी टेक केयर करते हैं, तुम्हारे बच्चे, घर, खाना पीना हम देंगे, तुम एक कमरे में बैठ जाओ और इस कुरान जैसी एक कॉपी लिख दो ताकि हम भी इनको दिखा सकें कि हमारे भी पास एक काम है। क्योंकि अमूमन देखे जब कोई काम आप करने लगते हैं ना तो फिर बहुत सारे लोग आपको देख के वो काम करने लगते हैं, वो भी आपके नामे में जाते हैं अगर अच्छी नीयत से वो करेंगे तो। बहरहाल अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा ठीक है, वो अंदर बैठ गया, उसको देते लेते करते काफी अरसा, जब कई महीने गुजर गए तो उसको कहा कि भाई बताओ क्या किया। जब देखा तो लिख लिख के जैसे बहुत सारी कोशिशें की हों सफ़ों का या जो उस दौर की चीज़ थी वो ढेर था। तो पूछा भाई बताओ भाई किस नतीजे पे पहुंचे, क्या हुआ? तो कहने लगा कि अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहद अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान हो गया। कहेंगे ये क्या, हमारे टुकड़ों पे पले, हमने इतनी मेहनत की और उस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो जिसके खिलाफ तुम्हें किताब लिखने को कहा। तो कहने लगा तुम लोग किताब की बात करते हो, जब से तुमने मुझे बिठाया है मैं उस वक्त से लेके इनकी सिर्फ एक आयत के वजन की कोई बात बनाना चाह रहा और मैं नहीं बना सका, और वो क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब देखिए इतना प्यारा कलमा है, फेल के बगैर है, बिस्मिल्लाह सात नाम अल्लाह के, क्या खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, कुछ नहीं लिखा। जहां आप इसको पढ़ते हैं ये वहीं आपको लगने लगता है। तो बड़ी मोहब्बत से बिस्मिल्लाह पढ़ा करें और अपने कामों का आगाज भी बिस्मिल्लाह के साथ किया करें। फिर अगली चीज इसमें आपने मलका जो थी उसके नाते से पढ़ी कि समझदार खातून थी इसीलिए हक को पहचान गई और बाद में मुसलमान हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात में जो जोश था उसकी वजह ये थी कि उनको अल्लाह ताला पर यकीन था। जितना किसी को अल्लाह पर यकीन होता है उसकी तबलीग, उसकी दावत, उसकी बातचीत में उसका रंग छलकने लगता है। जो बंदा बेअमल होता है वो बड़ी मजबूत बात कर नहीं सकता। जो खुद अल्लाह ताला के बारे में डाउटेड होता है वो लोगों को कभी भी उस ईमान की दावत दे ही नहीं सकता जो मतलूब ईमान है। तो सारे सबक में और भी बहुत सीखने की बातें इंशाल्लाह जब दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए कि इस्लाम का खूबसूरत इजहार उस दौर में दिख रहा है कि इतना बड़ा महल था कि फर्श शीशे का था और नीचे पानी था और मलका समझ ही नहीं पाई कि ये फर्श है, वो समझी ये पानी है। तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने वो अरूज और गलबा दिया था और ऐसा अरूज और गलबा या ऐसी तैयारियां या ऐसी चीजों का इस्तेमाल जो दूसरों को मरूब कर दे ये पसंदीदा है इस रंग से कि उससे फिर लोग सोचते हैं कि इस्लाम को गिरा बड़ा मजहब नहीं है। लेकिन जब ये सब कुछ अपने नाम पे होने लगता है तो ये फिर तकलीफ दे बात है। हमारी जो भी बड़ाई हो अगर हमें कोई नेमत मिले और हम लोगों में उसका इजहार भी करें ना तो उसके लिए नीयत दिल में ये रखा करें कि ये मेरे रब की नेमत है, उसकी बात पेश कर रही हूँ कि देखो मेरे रब ने मुझे दुनिया में इतना कुछ दिया है तो आगे क्यों नहीं देगा। और आप ये कहेंगे मैं इतनी नेक हूं कि मुझे दिया, सोच का फर्क है। नेमतों को पाके सारी नेमतें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देंगे तो इंशाल्लाह उससे फिर बहुत फायदा होगा। अब आगे हजरत सालेह की कौम की कहानी। वलकद अरसलना इला समूद अखाहुम सालेहा, यकीनन हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आपने फरमाया मेरी कौम के लोगो तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो, तुम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। वो कहने लगे हम तो तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। आपने फरमाया तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के हाँ है बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। इस शहर में 9 सरदार थे जो जमीन में फसाद फैलाते रहते और इस्लाह नहीं करते। उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया कि रात ही को सवाले और इसके घर वालों पर हम छापा मार देंगे और इसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम इसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद न थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने खुफिया मकर किया और हमने भी और वो इसे समझते ही ना थे। अब देख ले इनके मकर का अंजाम कैसा हुआ कि हमने इनको और इनकी कौम के सब लोगों को गारत कर दिया। ये हैं इनके मकानात जो इनके जुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं इनके लिए इसमें बड़ी निशानी है। हमने इनको जो ईमान लाए थे और परहेजगार थे बाल बाल बचा लिया। ये थी आयत नंबर 45 से 53, 45 to 53। इसका उन्वान लिखेंगे जुर्म एक ने किया, राजी सभी थे, नतीजा क्या निकला, अल्लाह ने सबको पकड़ लिया। इस हिस्से से हाईलाइट करने की जो बात है हमारे लिए वो क्या है, आयत नंबर 48। एक शख्स था केदार नाम का जिसने ऊंटनी को ज़िबह करने का या उसके पांव काटने का इरादा किया, नियत की। सिर्फ एक ने किया, बाकियों ने खामोशी से उसकी मुवाफकत कर दी। अल्लाह ताला ने जब पकड़ा तो सबको पकड़ लिया। एक हदीस सुन लीजिए, ये बात वाज़े हो जाएगी। नबी सल्लम ने फरमाया कि जब कहीं कोई गलत काम हो और कोई शख्स जो वहाँ मौजूद नहीं और दूर बैठा हुआ है और वो उस काम पे खुश है तो वो वैसा ही है जैसे कि उस काम को करने वाला। यानी बाज़ लोग किसी गुनाह की महफिल में पहुंच नहीं पाते, घर बैठ के आहें भरते रहते हैं, हाय मैं भी जाती, हाय मैं भी जाती, तो गोया कि वो उसके गुनाह में शामिल हो गए। इसी तरह कहीं कोई नेकी का काम हो और इंसान पूरी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद वहां ना पहुंच सके, दिल से उनके साथ हो या उस काम को देख के खुश हो तो वो वैसे ही है जैसे कि वहां मौजूद था। ये खामोश किस्म की जो तस्दीक होती है ना ये बहुत सारे लोगों को गलत कामों पर माइल करती है। एक शख्स गुनाह करके गुनाह पाता है और दूसरा शख्स जो है वो गुनाह करे बगैर उस गुनाह के अजर में शामिल ہو جائیں، کتنا قابل رحم ہے وہ شخص۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی تمام چیزوں کو جس میں دوسروں کی غلط چیزوں کو دل سے ہم پسند کر کے یا ایڈمائر کر کے دور بھی رہے، لیکن اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے کہ ہم دوسروں کے گناہوں پہ بھی پکڑے جائیں۔ وَلُوتًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کا ذکر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا، کیا لے لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں، بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی، بس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بڑی بری بارش ہوئی۔ تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 54 سے 59، 54 سے 59۔ ان آیات کا ٹاپک ہے سلام ہے ان بندوں پر جو چنے گئے۔ بہت بگڑے ہوئے ماحول میں سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ لوگوں کو برائیوں سے روک ہی لیتا ہے۔ آج جیسے کہ اس قوم لوط والے فعل یعنی ہومو سیکشولیٹی کا بہت غلبہ ہے، اسی طرح آج کے دور میں جو لوگ خاص طور پہ ینگس میں اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ خوش ہوگا ان دوسرے لوگوں کی نسبت جو اس فتنے کا شکار نہ کیے گئے۔ ہمیں اس سے ایک بہت ہی خوبصورت اصول ملا، اور وہ کیا کہ جہاں برائی زیادہ ہو وہاں اپنے آپ کو زیادہ بچانا ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، سبھی تو کر رہے ہیں، اب میں کیوں نہ کروں۔ کوئی بھی گناہ لے لیں، کوئی رسم کر لیں، کوئی رواج کر لیں، کوئی گھر لینے کی بات لے لیں، کوئی کچھ کرنے کا سٹائل ہو، لائف سٹائل، کوئی شادی بیاہ، واٹس ایور، جب سب کر رہے تو میں کیوں نہ کروں۔ جب کوئی کام سب کرتے ہیں نا تو اس میں سے اگر آپ نہیں کریں گے نا تو آپ بن جائیں گے وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، چنا ہوا ہوتا ہے وہ بندہ۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتا ہے، تو دعا کیجئے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نسلوں کو چن لیں تاکہ غلط کاموں کو کرنے کی بجائے وہ لوگ پھر اپنے آپ کو اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لیں۔ الحمدللہ پارا پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو ہم نے یہاں پڑھی سنی، اور جو نیتیں آپ نے کی ہیں پڑھنے کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر بہترین طور پہ جمنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔